श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री चैतन्य चरितामृत 19वां अध्याय श्लोक नंबर 168। तो कल हम पढ़ रहे थे चैतन्य महाप्रभु श्रील रूप गोस्वामी से बता रहे थे कि शुद्ध भक्ति क्या है। अन्य अभिलाष शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। तो उसको समझा रहे हैं, अन्य वंशा अन्य पूजा छड़ी ज्ञान कर्म आनुकूल्य सर्वेन्द्रिय कृष्णानुशीलन। तो अन्य अभिलाष शून्य जो पिछले श्लोक में बताया गया है, तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि अन्य अभिलाष क्या है। तो अन्य वांछा कि कृष्ण के अतिरिक्त या कृष्ण सेवा के अतिरिक्त दूसरी कोई भी कामना, ये अन्य वंशा है। और अन्य पूजा कि कृष्ण के अतिरिक्त दूसरे देवी देवताओं की पूजा, क्योंकि लोग भौतिक संसार में दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते हैं कुछ भौतिक कामना लेकर या भौतिक कामना की पूर्ति के लिए। इसलिए जो भगवान की भक्ति करना चाहता है शुद्ध भक्ति, वो अन्य देवी देवताओं के पास कोई कामना लेकर नहीं जाता है या अन्य देवी देवताओं की पूजा किसी कामना की पूर्ति के लिए नहीं करता है, एकमात्र कृष्ण की पूजा करता है। यद्यपि हम दूसरे देवी देवताओं को सम्मान प्रदर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, किंतु कोई भौतिक कामना लेकर हम ऐसा नहीं करते। तो देवी देवताएं भी भगवान के भक्त हैं, इसलिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए और उनको प्रणाम भी करना चाहिए, और केवल एक ही चीज मांगनी चाहिए उनसे कि कृष्ण भक्ति, और कोई अभिलाषा नहीं। तो ज्ञान और कर्म, तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि ज्ञान की अभिलाषा या ज्ञान प्राप्ति की अभिलाषा और तरह तरह के कर्म करके उसका फल भोगने की इच्छा, ये सब अन्य वंशा में आता है। तो ये ज्ञान कर्मादि अनावृतम कहा गया है, अन्य अभिलाष शून्य ज्ञान कर्म से अनावृत है। ये जो शुद्ध भक्ति है ज्ञान कर्म से विहीन, और अनुकूल्य सर्वेन्द्रिय कृष्णानुसेवन, और अनुकूलता पूर्वक कृष्ण का अनुशीलन करना। तो इसमें सारी इंद्रियों को लगाना भगवान की सेवा में, सर्वेंद्रिय। तो जैसे बताया है कि महाराज अम्बरीश किस प्रकार अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए हुए थे। सभी मन कृष्ण पदारविंदय वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णय। तो महाराज अम्बरीश अपने मन को सदा सर्वदा भगवान कृष्ण के स्मरण में लगाए हुए थे। सभी मन कृष्ण पदारविंद, मन को भगवान कृष्ण के चरण कमल में लगाए हुए थे, अर्थात चरण कमलों का स्मरण कर रहे थे सदा सर्वदा 24 घंटे। ऐसे शास्त्रों में बताया गया है స్మర్తవ్య సతతం విశ్వం విస్మర్తవ్య నా జాతోచిత్. భగవాన్ విష్ణు యా కృష్ణ కా స్మరణ సదా సర్వదా సతత్ కర్నా చాహియే, ఏక ముహూర్త్ కే లియే భీ నహీ భూల్నా చాహియే. తో యే మహారాజ్ అంబరీష్ ఐసా కర్తే థే, అప్నే మన్ కో భగవాన్ కృష్ణ కే చరణ కమలోం కే ధ్యాన్ మే లగాయే హుయే థే. ఔర్ బచాన్ సే వైకుంఠ గుణాన్ వర్ణన్ ఔర్ అప్నీ వాక్ శక్తి కో బోల్నే కి శక్తి కో యే భగవాన్ కృష్ణ కే గుణగాన్ మే లగాయే హుయే థే. ఇస్కా అర్థ హై యే భగవాన్ కృష్ణ కే గుణగాన్ కే అతిరిక్త యా నామ కీర్తన్ కే అతిరిక్త ఔర్ కుచ్ నహీ బోల్తే థే. హరేర్ మన్ కరో హరేర్ మందిరం అర్జునాదిషు, और जो हाथ है हाथ को भगवान के मंदिर के मार्जन में लगाए हुए थे. मंदिर में झाड़ू लगाना, साफ करना, भगवान के बर्तन साफ करना, ये सब मार्जन क्रिया है. तो हाथ को उसमें लगाए थे, यही सब इंद्रियों की सार्थकता है. कान को भगवान की कथा श्रवण में लगाए हुए थे, आंख को भगवान के सुंदर विग्रह के दर्शन में लगाए हुए थे. तो ये सब इंद्रियों की सार्थकता है. या चरण को भगवान के लीला स्थान दर्शन में लगाए हुए थे, स्थान में जाकर लीला स्थान का दर्शन करना. तो इस प्रकार इस सारी इंद्रियों को अम्बरीश महाराज भगवान की सेवा में लगाए हुए थे. तो यहां जब कहा जाता है कि अनुकूल्य सर्वेन्द्रिय कृष्णानुशीलन, तो भगवान कृष्ण का अनुशीलन इस प्रकार अपनी इंद्रियों के द्वारा करना आवश्यक है. तो जब सारी इंद्रियों को हम भगवान कृष्ण की सेवा में इस प्रकार लगाते हैं तो ये अनुकूलन कृष्णानुशीलन हो जाता है. तो यही शुद्ध भक्ति का लक्षण है. यही शुद्ध भक्ति यहां हैते प्रमा पंचरात्रे भागवते लक्षण कहे. तो यही शुद्ध भक्ति है और इससे कृष्ण प्रेम का उदय होता है. जब भक्त इस प्रकार आचरण करता है, शुद्ध भक्ति करता है, तो उसके हृदय में कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाता है. हृदय शुद्ध होकर और ये पंचरात्र और भागवत में यही बात बताई गई है. సర్వోపాధి వినిర్ముక్తం తత్పరత్వన నిర్మలం హృషికేన హృషికేశ సేవనం భక్తిరి ఉచ్యతే. తో ఇస్ శ్లోక్ మే భక్తి కా లక్షణ బతాయా గయా కి భక్తి కిస్కో బోల్తే హై. ये तो शुद्ध भक्ति के लक्षण बताए पहले कि शुद्ध भक्ति कैसे करना चाहिए, और अब भक्ति के बारे में बता रहे हैं कि भक्ति क्या है. कहते हैं सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते. तो जब हम हर तरह के उपाधियों से मुक्त होकर, तो भौतिक संसार में हम तरह तरह की उपाधियों से युक्त हैं, और इन उपाधियों के कारण हम अपने को और कुछ सोचते हैं जैसे जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास सेवक, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, किंतु हम उस स्वरूप को भूलकर भौतिक संसार में हम क्या सोचते हैं कि हम अमुक व्यक्ति हैं, हम इस परिवार में जन्मे हैं, हमारा नाम ये है, हम ये नौकरी करते हैं या ये व्यवसाय करते हैं, हम इतने बड़े धनी व्यक्ति हैं, हम ब्राह्मण कुल में जन्म हुए हैं, हम तरह तरह की उपाधियां, हम नेता हैं, हम समाज सेवी हैं, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, ये सब तरह तरह की उपाधियां, और इसके अनुसार हमारा कर्म निश्चित होता है। यदि हम सोचेंगे हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण का कर्म करेंगे, हम इंजीनियर हैं इंजीनियर का कर्म करेंगे, डॉक्टर डॉक्टर का कर्म करेंगे, तो ये उपाधि के कारण हम एक तरह के कर्म को अपना धर्म मानते हैं। और हमारा जो अपना स्वरूप उसको भूल जाते हैं या अपना वास्तविक कर्म को भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा जो स्वरूप है इसको हम भूल गए। इसलिए कहा गया है कि मुक्ति क्या है, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपं स्वरूपेण अवस्थित। तो जब हम कहते हैं मुक्ति, मुक्ति क्या है कि अन्यथा रूपं, हम लोग इस भौतिक संसार में आकर अन्य रूप को ग्रहण किए, भौतिक शरीर ग्रहण किए हैं, भौतिक शरीर से संबंधित ये उपाधियां इसको ग्रहण किए हुए हैं, ये अन्यथा रूप है, अन्य रूप है, इसको त्याग करके हित्वा अन्यथा रूप स्वरूपेण अवस्थित, अपने स्वरूप में अवस्थान करना कि मैं कृष्ण का नित्य सेवक हूं, यही हमारी नित्य उपाधि है कि कृष्ण का हम सेवक हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो उस स्थिति में सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं, जब हम इन उपाधियों से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित होंगे और अपनी इंद्रियों द्वारा भगवान की सेवा करेंगे। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं, तो अपने स्वरूप में आने पर हम निर्मल शुद्ध हो जाएंगे उपाधियों से मुक्त होने पर। हृषिकेण हृषिकेश सेवनम्, अब इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी भगवान की सेवा करना, तो यही भक्ति है कि जो हमारी इंद्रियां हैं शुद्ध इंद्रियों में हम भगवान की सेवा करें, तो यही भक्ति कही जाती है। इसका अर्थ है कि अशुद्ध इंद्रियों में हम जो सेवा करते हैं ये शुद्ध भक्ति की कोटि में नहीं आती। अशुद्ध इंद्रियों के द्वारा हम भगवान की सेवा करते हुए इंद्रियों को शुद्ध करते हैं, और शुद्ध इंद्रियों में जो सेवा होगी वो शुद्ध भक्ति मानी जाएगी। अभी हम अशुद्ध इंद्रियों के द्वारा जो सेवा करते हैं उसमें बहुत सारी गलतियां इसलिए होती है, हम भगवान की सेवा में बहुत सारी गलतियां करते हैं क्योंकि इंद्रियां शुद्ध नहीं है, मन शुद्ध नहीं है, इसलिए हमें पता भी नहीं चलता कि हम गलती कर रहे हैं। तो शुद्ध इंद्रियों में शुद्ध भक्ति संभव है।
मद्गुण श्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगा भसो अम्बुधो।
తో ये शुद्ध भक्ति का लक्षण बताया गया है कि मद्गुण स्मृति मात्रेण मई सर्वगुहास है, मनोगति अभिचन्ना यथा गंगा वसु अम्बुजो। तो ये बताया गया है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन शुद्ध भक्ति का आचरण करता है। तो शुद्ध भक्ति हम इससे देख सकते हैं कि जब व्यक्ति, ये भगवान कपिल देव कह रहे हैं माता देवहूति से कि मद्गुण श्रुति मात्रेण मई सर्व गुहास है। तो भगवान कृष्ण सभी के हृदय में निवास करते हैं, हृदय को गुफा का बताया गया है। तो भगवान कृष्ण सभी के हृदय में, हृदय रूपी गुफा में या गुहा में निवास करते हैं। तो जब व्यक्ति भगवान के गुणों का श्रवण करता है और गुणों के श्रवण मात्र से मद्गुण श्रुति मात्रेण मई सर्वगुहास है मनोगति अभिचिन्न, तो मेरे गुणों के श्रवण मात्र से जिस व्यक्ति का मन अभिचलित रूप से मुझ में स्थित हो जाता है, मैं जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करता हूं, तो मेरे गुण श्रवण मात्र से जिसका मन अविचलित रूप से विचलित न होकर अविचलित रूप से मुझ में ही स्थित हो जाता है। क्योंकि हम कभी जब भगवान के बारे में सोचते हैं तो हो सकता है कि एक सेकंड के लिए सोचें, दो सेकंड के लिए, फिर मन इधर उधर चला जाता है, भगवान में स्थिर नहीं रहता है। इसका अर्थ है कि मन की गति यहां विचलित हो जाती है, अविचलित नहीं होती। तो यहां बताते हैं कि शुद्ध भक्ति में मन की गति विचलित नहीं होगी, स्थिर हो जाएगी भगवान में। और यही वस्तु तो समाधि की अवस्था है कि जब मन स्थिर हो जाएगा भगवान में, भगवान के गुण श्रवण मात्र से मन चला जाएगा भगवान के पास और उसी में स्थिर हो जाएगा उन्हीं में। तो मनोगति अभिचिन्ना यथा गंगा वसु अम्बुजो। तो उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार गंगा का जल सागर की ओर जाता है, बह जाता है, तो गंगा का जल जब सागर की ओर जाता है तो अभिचिन्न रूप से बहता जाता है, कहीं बंद नहीं हो जाता है। तो उसी प्रकार जो शुद्ध भक्त है उसके मन की गति अभिचिन्न रूप से, अभिचलित रूप से वो भगवान की ओर चला जाता है, बीच में किसी भी तरह की रुकावट नहीं पड़ती या बंद नहीं होता, वो जाकर भगवान में लगा रहता।
लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हि उदारतम अहेतुकी अव्यवहिताया भक्ति पुरुषोत्तम।
तो ये भगवान के दिव्य प्रेम का लक्षण है कि ये भगवान लक्षणों भक्ति योग से, ये भक्ति योग का ये लक्षण है जो निर्गुण बताया गया है, भौतिक गुणों से परे जो भक्ति योग है, ये अहेतु की अव्यवहिता। तो ये भक्ति योग का कोई भौतिक कारण नहीं है, ये स्वाभाविक रूप से। अब हम भक्ति करते हैं कुछ भौतिक कारण को लेकर, किंतु शुद्ध भक्ति तब होती है जब कोई भौतिक कारण नहीं रह जाता, स्वाभाविक रूप से हम आकृष्ट होते हैं भगवान की ओर। अभी हमें प्रयास करना पड़ता है, किंतु स्वाभाविक रूप से जब हम आकृष्ट होंगे और अव्यवहिता भक्ति में बाधा उत्पन्न होने पर भी हमारी भक्ति बाधित नहीं होगी। तो उसको शुद्ध भक्ति माना गया। यदि भक्ति में बाधा उत्पन्न होने पर भक्ति बाधित हो गई तो फिर वो शुद्ध भक्ति कोटि में नहीं आती। जैसे प्रहलाद महाराज, उनकी भक्ति में कितनी सारी बाधाएं उपस्थित हुई उनके पिता के द्वारा, फिर भी प्रहलाद महाराज की भक्ति बाधित नहीं हुई, अव्यवहित। तो भक्ति के मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आ सकती है, किंतु उन बाधाओं के आने पर यदि हम ये सोचते हैं कि चलो ये असुविधाएं, ये असुविधाएं, ये हम नहीं कर सकते, छोड़ देते, इसका अर्थ है कि हम हमें शुद्ध भक्ति नहीं है, क्योंकि हमारी भक्ति बाधित हो गई। किंतु बाधित होने पर भी यदि हम भक्ति को जारी रखते हैं तो उसको शुद्ध भक्ति बताया गया है।
सालोक्य षष्ठी सामीप्य सारूप्य तुंग पीयूत दीयमानं न गृणन्ति विना मत्सेवनं जना।
तो भगवान कह रहे हैं कि यद्यपि मैं अपने भक्तों को इस चार प्रकार की मुक्ति प्रदान करता हूं, मुक्ति पांच प्रकार की है, तो एक तो सायुज मुक्ति है जिसको भक्त लोग ग्रहण नहीं करते, केवल जो निर्विशेषवादी हैं वो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, भगवान को निराकार मानते हैं, ये लोग सायुज मुक्ति को ग्रहण करते हैं, वही उनके जीवन का लक्ष्य है। किंतु जो भक्त जन होते हैं ये सायुज मुक्ति को नरक तुल्य मानते हैं। किंतु भक्त लोग और दो चार प्रकार की मुक्ति है उसको ग्रहण कर सकते हैं, सारूप्य शास्त्री सामीप्य सालोक्य। सारूप्य का अर्थ है भगवान के समान रूप को प्राप्त करना, सारूप्य सालोक्य भगवान के लोक को प्राप्त करना, सामीप्य भगवान के समीप रहने, हाँ समीप्य रहने की सुविधा प्राप्त करना, सामीप्य या उनके पार्षद बनना, भगवान के पार्षद बनना। और शास्त्री अर्थात भगवान के समान ऐश्वर्य को प्राप्त करना। तो ये चार प्रकार के मुक्ति भक्त लोग प्राप्त करते हैं, किंतु भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तजन शुद्ध भक्तजन ऐसे हैं कि दीयमानं न गृह्णन्ति। यद्यपि मैं देने के लिए प्रस्तुत हूं मेरे भक्तों को ये चार प्रकार की मुक्ति, किंतु मेरे भक्त लोग ये चार प्रकार की मुक्ति को भी ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए बिना मत सेवनं जना कि मेरी सेवा के अतिरिक्त मेरे भक्त इस मुक्ति को भी नहीं चाहते।
సయవ భక్తి యోగాఖ్య అత్యంతిక ఉదారత. జనాతే బ్రజ త్రిగుణం మద్భావాయోపపద్యతే.
तो भक्ति योग जिस प्रकार ये वर्णन किया गया है, ये मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है. परम पुरुष भगवान की भक्ति करने से या भक्तिमूलक सेवा करने से व्यक्ति भौतिक प्रकृति के तीन गुणों को अतिक्रम कर जाता है, अर्थात तीन गुणों के ऊपर हो जाता है, निर्गुण स्थिति को प्राप्त करता है. और उस स्थिति में वो भक्ति के दिव्य स्तर को प्राप्त हो जाता है. जब व्यक्ति भौतिक जगत के जो तीन गुण है उसके ऊपर उठ जाता है, तो ये भक्ति के दिव्य स्तर को प्राप्त हो जाता है.
भुक्ति मुक्ति आदि वंशा यदि मने है, साधन करिले प्रेम उत्पन्न ना है.
तो श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जब भक्त भक्ति का साधन कर रहा है और भक्ति साधन का जो मुख्य फल है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, जब इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, व्यक्ति भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से ऊपर उठ जाएगा, तो उस स्थिति में वो प्रेम को प्राप्त होना चाहिए, कृष्ण प्रेम को. किंतु यदि हृदय में भुक्ति और मुक्ति की वांछा है, भोग की कामना रह गई है, भक्ति का साधन कर रहा है भक्त, किंतु मन में भोग की कामना है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मुझे ये भोग चाहिए, भोग की कामना है, या मुक्ति की कामना है, तो उसके हृदय में कभी ये कृष्ण प्रेम उदय नहीं हो सकता साधन करने पर भी.
भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाची हृदय वर्तते, तावत भक्ति सुख सत्र कथं अभ्युदयो भवेत.
तो ये भुक्ति और मुक्ति की जो स्पृहा है, आग्रह, भुक्ति और मुक्ति के प्रति जो आग्रह है, इसको पिशाची के समान बताया गया है. पिशाची राक्षसी, ये भुक्ति मुक्ति की स्पृहा जो है, इच्छा है, कामना, भोग की कामना और मुक्ति की कामना, ये राक्षसी के समान है. और जिसके हृदय में ये राक्षसी बैठ गई है, भोग की कामना और मुक्ति की कामना रूपी राक्षसी बैठ गई है, तो तब तक उसके हृदय में एक कृष्ण प्रेम या कृष्ण प्रेम से उत्पन्न जो दिव्य आनंद है, वो उसको कैसे प्राप्त कर सकता है. तो इसलिए कृष्ण प्रेम से उत्पन्न या भक्ति से उत्पन्न जो दिव्य आनंद है, वो उसको प्राप्त नहीं कर सकेगा जब तक भोग की कामना हृदय में है या मुक्ति की कामना। साधन भक्ति है ते है रतिर उदय रति गाढ़ है ले तार प्रेम नाम कह। तो साधन भक्ति से व्यक्ति का भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है साधन भक्ति के द्वारा। तो साधन भक्ति हम जो करते हैं कि भगवान का नाम कीर्तन करना, जप करना, भगवान की कथा का श्रवण करना, भगवान की कथा कहना, भगवान का दर्शन करना, उनकी पूजा करना, उनको प्रणाम करना, स्तुति करना, तो तरह तरह के सेवाएं हम करते हैं, भगवान की सेवाएं करते हैं, अपने को भगवान का सेवक मानकर उनके चरणों में अपने को समर्पित करते हैं और भगवान को अपना एकमात्र बंधु मानते हैं। तो ये साधन भक्ति के अंग जो है, तो ये साधन भक्ति करते करते यदि हमारे हृदय में ये भुक्ति मुक्ति की कामना नहीं है, भुक्ति मुक्ति की कामना को त्याग करके जब हम साधन भक्ति करते हैं तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे कृष्ण के प्रति हमारी आसक्ति वृद्धि प्राप्त होती है, हम कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और यही आसक्ति अंत में हमें कृष्ण के चरणों में प्रेम प्रदान करती है। तो ये हमें एक स्तर से दूसरे स्तर, तीसरे स्तर, इस प्रकार जाकर अंत में प्रेम के स्तर को हम प्राप्त होते हैं। जैसे बताया गया है कि आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथवा भजन क्रिया। तो पहले व्यक्ति के हृदय में तो भगवान के प्रति थोड़ी सी श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए, अन्यथा वो साधु संग नहीं कर सकता। यदि किसके मन में भगवान के प्रति विश्वास नहीं है तब वो साधु संघ में नहीं आ सकता। जो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं वो साधु संघ में नहीं आते हैं। तो कम से कम पहले भगवान पर विश्वास होना चाहिए, तब जाकर व्यक्ति साधु या भक्तों के संग में आता है। और भक्तों के संग में आने से, साधु संघ में आने से क्या होता है, वो भगवान की कथा श्रवण करता है साधु संघ में, भगवान की कथा श्रवण करता है और भगवान को कैसे प्राप्त करेगा उसके लिए मार्ग भी प्राप्त करता है। तो जैसे बताया गया है कि आदो श्रद्धा तथा साधु संग अथवा भजन क्रिया। तो कैसे भजन करेगा भगवान का, कैसे साधन करेगा, ये मार्ग को प्राप्त होता है। किंतु साधन करने के लिए दिग्दर्शन की आवश्यकता है, कोई बताने वाला गुरु चाहिए। तो गुरु के अनुगत्य में भजन करना और अनुगत्य में भजन करने से व्यक्ति के हृदय में जो अनर्थ है ये सब निवृत्त हो जाता है। तो अनर्थ कई प्रकार के हैं, ये सब अनर्थ के ऊपर अलग से हम विचार कर सकते हैं। तो जैसे कल हम थोड़ा बहुत चर्चा कर रहे थे कि निषिद्धाचार, कुटीनाटी, ये सब जो अनर्थ है, तो ये अनर्थ और ये भुक्ति मुक्ति की कामना भी अनर्थ में क्या हाँ लाभ पूजा प्रतिष्ठा, तो ये सब अनर्थ जब निवृत्त हो जाएंगे तब जाकर रुचि उत्पन्न होगी। भक्ति करने में भगवान में रुचि उत्पन्न होगी। जैसे अभी हम जप कर रहे हैं, जप में हमारी रुचि नहीं है किंतु गुरु ने बताया है, गुरु के निर्देशन में साधन कर रहे हैं, तो इतनी रुचि नहीं होने पर भी हम करते हैं, नियम से बंधे कर रहे हैं। किंतु जब अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी हृदय से, सारे अनर्थ नष्ट हो जाएंगे इस साधन करने से, तो भगवान की भक्ति में रुचि उत्पन्न हो जाएगी, जप में रुचि होगी, भगवान के दर्शन में रुचि, उनकी कथा सुनने में रुचि, ये सब रुचि उत्पन्न हो जाएगी। अभी हमारी हमारे मन में रुचि नहीं है किंतु हम बाध्य होकर करते हैं क्योंकि अनर्थ है हृदय में। जब अनर्थ निवृत्त हो जाएंगे तो रुचि उत्पन्न होगी। जो काम हम कर रहे हैं वही काम में हम आग्रह पूर्वक करेंगे। अब आग्रह पूर्वक नहीं करते हैं क्योंकि अनर्थ है, और रुचि से आसक्ति उत्पन्न होगी भगवान में। तो ये आसक्ति से फिर भाव, उसके बाद प्रेम, ये सब स्तर के एक स्तर के बाद दूसरे स्तर को हम प्राप्त होते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। किंतु पहले से ये अनर्थ निवृत्त नहीं होने के कारण हम वहीं पड़े रहते, आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि हमारे हृदय में बहुत सारे अनर्थ है। इसलिए इन अनर्थों को जानना और उसको हृदय से निकालने के लिए प्रयत्न करना आवश्यक है, तब जाकर हम आगे बढ़ेंगे भक्ति मार्ग में। तो अनर्थ के ऊपर हम अलग से क्लास करेंगे अब यहाँ समर्थ संभव नहीं है उसके ऊपर विशद रूप से चर्चा करने के लिए। प्रेम बुद्धि क्रमे नाम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव है। तो जब कृष्ण प्रेम में वृद्धि होती है तो उसमें कई प्रकार के भाव देखे जाते हैं प्रेम में। तो उसमें स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, ये प्रेम के स्तर है। तो यहाँ प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो स्नेह, इसमें हृदय पिघलता है, तो प्रेम का जो स्तर है, पहला स्तर स्नेह, तो उसमें हृदय पिघलता है। इसका अर्थ है कि जब भक्त का हृदय पिघलता है भगवत प्रेम में, वो भगवान के बिना एक पल भी नहीं रह सकता, ऐसा उसके मन में आएगा। तो इस प्रकार अलग अलग स्नेह मान प्रणय इसको समझा गया है महाभारत तक। ये रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंध में इसको विशद रूप से इसकी व्याख्या की।
जैच्छे बीज इक्षुरस गुड़खंड सा शर्करा सीता मिछरी उत्तम मिछरी आर यही सब कृष्ण भक्ति रसे रस्थाई भाव स्थाई भावे मिले यदि विभाव अनुभाव
थोड़ा कठिन है समझने के लिए आगे जो बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, तो हम थोड़ा केवल श्रवण करें इसको। तो कहते हैं कि प्रेम के जो स्तर हैं तो इसको इस रूप में हम समझ सकते हैं कि जैसे चीनी का स्तर होता है, चीनी जैसे बनता है तो एकाएक चीनी नहीं बन जाता है, कई स्तर होकर चीनी बनता है। तो कहते हैं कि जैसे चीनी बनने से पहले पहले तो गन्ना जो है, गन्ने के बीज को बोना है, पहले यही काम करना है चीनी बनाने के लिए। गन्ने का बीज बोना है, फिर उस बीज से गन्ना निकलेगा, गन्ने का पौधा निकलेगा। और जब गन्ने का पौधा बड़ा हो जाएगा उसके बाद उसको काट करके फिर उसको पीसते हैं रस निकालने के लिए, तो गन्ने का रस निकलता है। और गन्ने के रस को फिर क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, आग में रखते हैं, तो गन्ने का रस गर्म होता है, गर्म होते होने से ये गुड़ होता है, उससे गुड़ बनता है। और वो गुड़ पहले तो तरल गुड़ होता है, उसके बाद फिर वो कठिन हो जाता है, और उस कठिन गुड़ से मिश्री बनता है। ये सीखना चाहिए, आजकल लोग नहीं जानते हैं, पहले होता था। तो उसे मिश्री बनाते हैं, खांड बनाते हैं, और बाद में लास्ट स्टेज में चीनी बनता है। तो ये जो प्रेम का स्तर बताया गया है इसी प्रकार एक स्तर से दूसरे स्तर से तीसरे स्तर, इस प्रकार जाकर अंत में महाभाव तक पहुंचता है, भाव महाभाव। ई सब कृष्ण भक्ति रसे रस्थाई भाव स्थाई भावे मिले यदि विभाव अनुभाव सात्विक व्यभिचारी भावे मिलने कृष्ण भक्ति रस हय अमृत आस्वादने। तो कहते हैं कि ये कृष्ण भक्ति रस के ये जो स्तर हैं इसको स्थाई भाव बताया गया, अर्थात भक्ति में ये प्रेम का स्थाई भाव है। और इसके साथ साथ विभाव और अनुभाव भी है, ये सब टेक्निकल टर्म है। तो विभाव और अनुभाव है, सात्विक व्यभिचारी भावे रो मिलने कृष्ण भक्ति रस हय अमृत आस्वादने। तो ये तो कृष्ण प्रेम के जो उच्चतम भाव है वो सात्विक और व्यभिचारी भाव के मिलन से भक्त कृष्ण प्रेम का आनंद जो है अमृतोपम आनंद का आस्वादन करता है। जय छे दधि सीता घृत मरीच कर्पूर मिलने रसाल हय अमृत मधुर। तो ये जो कृष्ण प्रेम का जो अमृत है इसका स्वाद इस प्रकार बताया गया है कि जिस प्रकार दधि में मिश्री मिलता है और उसमें घी मिलाया जाता है और उसमें गोलमरीच काली मिर्च और उसमें कपूर मिलाया जाता है तो ये अमृत के समान इसका स्वाद होता है। ये जब सारी चीजें मिल जाती है इसमें तो इसलिए उसको खान क्या बोलते हैं श्रीखंड भी इसे मिलता है तो मिला करके देखिए कैसा लगता है भक्त भेदे रति भेद पंच प्रकार शांत रति दास्य रति सख्य रति वात्सल्य रति मधुर रति ये पंच विभेद रति भेदे कृष्ण भक्ति रसे पंच भेद। तो भक्त की जो आसक्ति है भगवान के प्रति उसके अनुसार ये पांच प्रकार के आसक्ति बताई गई है। शांत रस की आसक्ति दास्य सख्य वात्सल और मधुर। ये आसक्ति के कारण इस प्रकार पांच प्रकार के विभाजन हुए हैं। शांत दास्य सख्य वात्सल मधुर रस नाम कृष्ण भक्ति रस मध्य पंच प्रधान। तो कृष्ण भक्ति रस के रस में ये पांच जो रस हैं इसको प्रधान रस माना गया है। हास्योद्भूत तथा वीर करुण रुद्र इत्यपि भयानक सभी भाष इति गुणश्च सप्तधा। तो ये पांच रस बताया गया है जो मुख्य है कृष्ण भक्ति में और सात रस जो गौण रस है बताया गया। तो ये गौण रस क्या क्या है कि हास्य रस अद्भुत रस वीर रस करुण रस रौद्र रस भयानक रस विभत्स रस। ये सात गौण रस बताया गया है कृष्ण भक्ति में। हास्य अद्भुत वीर करुण रौद्र विभत्स भय पंचविध भक्त गौण सप्त रस है। पंचरस स्थायी व्यापी रहे भक्त सने सप्त गौण आगंतुक पाइए कारणे। तो भक्त में ये जो पंचरस है शांत दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य ये भक्तों में स्थायी भाव से रहता है किंतु ये जो सात गौण रस बताए गए ये समय पाकर या कोई कारण उपस्थित होने पर भक्त के हृदय में इन सात रसों में कोई रस उत्पन्न होता है, इसलिए इसको स्थाई रस नहीं कहा गया है, इसको संचारी रस या गौण रस माना गया है।
शांत भक्त नव जोगेन्द्र सनकादि यार दास्य भाव भक्त सर्वत्र सेवक अपार।
तो अब उदाहरण दे रहे हैं कि ये जो पांच मुख्य रस हैं भक्ति के, इन रसों के कौन कौन भक्त हैं। तो शांत रस के भक्त जो हैं ये हैं नव योगेंद्र और सनक आदि, सनक सनातन, सनातन और सनत कुमार, ये जो चार कुमार ये शांत रस के भक्त माने गए।
दास्य भाव भक्त सर्वत्र सेवक अपार।
दास्य भाव के तो बहुत सारे भक्त हैं, तो दास्य भाव के भक्त में मुख्य कौन है?
हनुमान
जी।
सख्य भक्त श्रीदामादि पुरे भीमार्जुन वात्सल्य भक्त माता पिता जत गुरु जन।
तो सख्य भक्त में श्रीदामादि जो भगवान कृष्ण के मित्र थे वो सख्य रस के भक्त थे, और इधर हस्तिनापुर में भीम अर्जुन आदि ये सब सख्य रस के भक्त, और वात्सल्य रस में कृष्ण के माता पिता और जो गुरुजन कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं तो ये वात्सल्य रस के भक्त हुए।
मधुर रस भक्त मुख्य ब्रजे गोपी गण महिषी गण लक्ष्मी गण असंख्य गण।
तो मधुर रस के जो भक्त हैं उसमें मुख्य है ब्रज गोपिका है और द्वारका की रानी है और जितने लक्ष्मियां हैं वैकुंठ में। तो इस प्रकार असंख्य मधुर रस के भक्त हैं।
पुनः कृष्ण रतिहाय द्वित प्रकार ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रा केवला भेदार।
तो भगवान कृष्ण के प्रति जो आसक्ति है ये दो प्रकार के हैं, एक तो ऐश्वर्य युक्त है और एक बिना ऐश्वर्य के शुद्ध आसक्ति युक्त है। तो इसलिए इसको ऐश्वर्य भक्ति और केवला भक्ति कहा गया है।
तो गोकुल केवला रति ऐश्वर्य ज्ञान ही न पुरी द्वय वैकुंठा दे ऐश्वर्य प्रवीण।
तो जो केवला भक्त रति है, केवला रति या केवला आसक्ति जो है ये ऐश्वर्य ज्ञान से हीन है। जैसे गोकुल में वृंदावन में जो भक्तगण है ये भगवान को कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे, उनका ऐश्वर्य को उतना गुरुत्व नहीं देते थे, उनका स्वाभाविक प्रेम था कृष्ण के प्रति। किंतु द्वारका में और वैकुंठ आदि में वहां पर ऐश्वर्य ज्ञान है, कृष्ण के प्रति जो भक्ति है रति है ये ऐश्वर्य से मिश्रित है, वहां सभी जानते हैं कृष्ण भगवान है, इसलिए उनके प्रति जो भाव है ये संभ्रम भाव है, किंतु वृंदावन में विश्रम भाव है।
ऐश्वर्य ज्ञान प्राधान्य संकुचित प्रीति देखिया ना मन ऐश्वर्य केवल रीति।
तो जो प्रीति ऐश्वर्य ज्ञान प्रधान है या जो रति ऐश्वर्य ज्ञान प्रधान है उसमें प्रीति संकुचित, प्रेम संकुचित हो जाती है, हो जाता है, क्योंकि भगवान के प्रति एक संभ्रम भाव रहता है इसलिए प्रेम संकुचित होता है। किंतु जो केवलारति के भक्त हैं जैसे गोपीगण, तो ये भगवान का ऐश्वर्य देखने पर भी उनकी प्रीति या रति संकुचित नहीं होती। जैसे कृष्ण ने माता यशोदा को अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया, फिर भी माता यशोदा की जो प्रीति है कृष्ण के प्रति, वात्सल्य प्रीति, वो संकुचित नहीं हुई। कि माता यशोदा ये सोचने नहीं लगी ये तो मैं भगवान है, ये मेरा पुत्र नहीं है, ऐसा नहीं सोचा माता यशोदा ने, जबकि देवकी ने सोचा मथुरा में। तो इसलिए वृंदावन में ये केवलारति है जिसमें प्रीति संकुचित नहीं होती है भगवान का ऐश्वर्य देख कर भी। शांत दास रस ऐश्वर्य का ही उद्दीपन, वात्सल सख्य मधुरे तो करे संकोचन। तो शांत दास रस ऐश्वर्य कहाँ उद्दीपन, तो शांत और दास रस में कभी कभी ऐश्वर्य ज्ञान रहता है, किंतु वात्सल्य सख्य और मधुर रस में ऐश्वर्य प्रीति को संकुचित कर देता है। तो इसलिए वहां ऐश्वर्य आवृत हो जाता है, सख्य वात्सल्य और माधुर्य में प्रेम प्रकाशित होता है और ऐश्वर्य आच्छादित हो जाता है। ये स्वभाव है ये तीन रसों का, दास्य सख्य वात्सल्य, सख्य वात्सल्य माधुर्य। किंतु दास्य में और शांत में ऐश्वर्य का प्रभाव रहता है। वसुदेव देवकीर कृष्ण चरण बंदिल, ऐश्वर्य ज्ञान दुहार मने भय आयल। तो उदाहरण दे रहे हैं कि जब कंस के वध के पश्चात भगवान कृष्ण और बलराम दोनों गए देवकी और वसुदेव के पास और जाकर उनके चरणों की वंदना की, प्रणाम किया, किंतु वसुदेव और देवकी वो देख रहे थे कि कैसे कृष्ण ने वध किया कंस का, बलराम ने, दोनों ने कितने कितने वीरों का वध किया है, और उस समय उनकी आयु कितनी थी, 11 साल का। तो उस अवस्था में कंस जैसा असुर जो 10,000 हाथी का बल था कंस का, और कृष्ण ने खेल खेल में उनको उसको मार दिया, और कृष्ण बलराम दोनों ने चाणूर मुष्टिक आदि मल्लों को वध किया उसी आयु में। तो देवकी वसुदेव आश्चर्यचकित थे क्योंकि उनको तो पता था कि ये भगवान है, कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया था ना जन्म के समय, तो इसलिए उनको ऐश्वर्य ज्ञान हो गया। जब कृष्ण बलराम आए प्रणाम कर रहे हैं उनके चरणों में माता पिता समझ करके, किंतु वसुदेव देवकी हाथ जोड़ करके खड़े हैं, वो सोच रहे हैं कि भगवान है, पुत्र ज्ञान नहीं आ रहा है। तो वही बात कह रहे हैं, तो ऐश्वर्य ज्ञान है दुहार मने भय हल, क्योंकि वो कृष्ण को भगवान मान रहे थे इसलिए वो डर रहे हैं, उनके मन में भय है भगवान के प्रति, वो आकर चरण वंदना कर रहे हैं फिर भी हाथ जोड़कर खड़े हैं। देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वरो कृत संबंधनं पुत्रो
సస్వజాతేన సంకితౌ
तो इस श्लोक में ये बताया गया, ये भागवत का श्लोक है। तो जब कृष्ण बलराम ने जाकर प्रणाम किया देव के वसुदेव को, तो माता पिता के कर्तव्य है कि उनको आलिंग उठा के आलिंगन करना, किंतु देवकी और वसुदेव दोनों हाथ जोड़कर खड़े थे। तो कृष्ण बलराम को इतने सालों के पश्चात उनसे मिल रहे हैं, तो उनको जाकर तुरंत आलिंगन करना था, किंतु हाजिर कर दोनों खड़े हैं, क्योंकि उनको भगवत ज्ञान हो गया कि ये दोनों भगवान। तो पुत्र ज्ञान नहीं आया, क्योंकि ऐश्वर्य वहां भगवान का ऐश्वर्य देव की वसुदेव के प्रेम को ऐश्वर्य ने आच्छादित कर दिया, प्रेम वहां आच्छादित हो गया।
कृष्ण रा विश्व रूप देखी अर्जुन रहला भय, सख्य भावे धष्ट क्षमा पय करिया विनय।
तो और एक उदाहरण देते हैं, जब कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विश्वरूप दिखाया, तो विश्वरूप को देखकर अर्जुन भयभीत हो गए, उनको ऐश्वर्य ज्ञान हो आया। तो इसलिए अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, आपको मैं सखा मानकर आपके साथ एक साथ एक सया पर हम सोए हैं, एक साथ खाए हैं, एक साथ क्रीड़ा किए हैं, तो ये सब हम एक साथ किए हैं और उसमें कई सारी गलतियां मैंने की, आपको सखा मानकर हमने ऐसा किया है, तो इसलिए हमें क्षमा कर दीजिए। क्योंकि वहां उस समय भगवत ज्ञान आ गया अर्जुन,
तो अब भगवत गीता से चैतन्य महाप्रभु उद्धृत कर रहे हैं कि अर्जुन ने क्या कहा था भगवत गीता में। तो हम यहीं विश्राम देते हैं आज, फिर कल इस समय, कल श्री रामनवमी है, इसलिए कल का क्लास श्री रामनवमी के ऊपर होगा। हरे कृष्ण। जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। फिर परसों से हम आरंभ करेंगे चैतन्य चरितामृत, कल श्री रामनवमी के ऊपर रामकथा
की।
तुम्हें लास्ट वेल को पहुंच ला कौन कर तुम बहुत व्यस्त हो सर है मिलूनी कहीं परिवार सुनी खाली के चल मैंने कि स्टोर कर दू घर अच्छा अच्छा बाहर गाड़ी आस पार जो गुडा सब माल धरिक
माल
बंद हेल्थ असुविधा हम ना ନାଇଁ ମାଲଗାଡ଼ି ତ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ
କରନ୍ତି
କୋଉ ଗାଡି ହଁ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲା କୋଉଠୁ ବାଲେଶ୍ୱରଠୁ ଚାଲିଲାଣି କୋଉଠୁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଥିଲା କି ଆଚ୍ଛା